नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव जी, स्वागत है आपका।
मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। शुभमन गिल को सौंपी टीम की कमान, ऋषभ पंत को बनाया उप कप्तान। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। और केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, पूर्वोत्तर में उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की शुरुआत की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट।
इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। अंडर 19 और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी की क्षमता दिखा चुके होनहार बल्लेबाज शुभमन गिल पर बोर्ड ने भरोसा जताया है और उन्हें भारतीय टीम की कमान सौंपी है। उपकप्तानी की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम की ये पहली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला होगी। तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को भी टीम में शामिल किया गया है। अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर भी हाल के दिनों में अपनी काबिले तारीफ प्रदर्शन के बल पर 8 साल के बाद टीम में वापसी करने में कामयाब हुए हैं। टीम में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, हर्षदीप सिंह, कुलदीप यादव और एक अतिरिक्त विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 से 24 जून को लीड्स में खेला जाएगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो संजीव जी, तमाम अटकलों के बीच भारतीय टेस्ट टीम को अपना नया कप्तान मिल गया।
हाँ, देखिए, ये पहले से चल रहा था कि शुभमन गिल का नाम आगे चल रहा था और बुमराह का भी उसमें जिक्र हो रहा था कि बुमराह को भी कप्तानी मिल सकती है। ये सवाल भी था चीफ सेलेक्टर से कि भाई बुमराह क्यों नहीं बने, तो उनका ये कहना था, उन्होंने एक इंडिकेशन भी दिया कि याद होगा कि पिछले दिनों वो इंजर्ड भी हुए थे बुमराह और बीच सीरीज में हटे थे, तो उनसे ये था कि वो खेलेंगे, पांचों टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये एक डाउटफुल था क्योंकि उनका वर्कलोड, अभी आईपीएल भी खेल रहे हैं, उसके बाद 5 टेस्ट मैच, एक बहुत लंबी सीरीज है, उसमें वो लगातार खेलेंगे तो हो सकता है कि उनके बैक में और इशू आ जाए। इस वजह से ये इंडिकेशन दिया गया कि वो सारे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और यही वजह है कि एक युवा कंधों पर, और शुभमन गिल जो है अभी आईपीएल और उसको तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनकी कप्तानी की कुछ झलक दिख रही है और खासतौर पे ये देखा जा रहा है कि बहुत ही कूल रहते हैं। भारतीय टीम की कप्तानी करना आसान नहीं होता, बट वो बहुत कूल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कप्तान है तो फिर वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो टीम को प्ले ऑफ में ले जाते हैं। कोई भी टीम हो, एक कप्तानी का रोल अच्छा निभा रहे हो तो उन पर निगाहें होती है और फ्यूचरिस्टिक कदम है, आगे लंबा समय है अभी, तो किसी ऐसे युवा को ये जिम्मेदारी देने की बात थी कि जो लंबे समय तक टीम की अगुवाई कर सके, तो उसके तहत मुझे लग रहा है शुभमन गिल एक अच्छे कैंडिडेट थे और उन पर भरोसा जताया गया है।
जी बिल्कुल, कहा जा सकता है क्योंकि एक युवा टीम दी गई है, नई टीम दी गई है,
बिल्कुल,
और बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियां होने वाली हैं शुभमन गिल के लिए भी आने वाले समय में, क्योंकि ओवरसीज कंडीशन में एक युवा टीम को लेकर आगे बढ़ना। और अब बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की, जहां जयपुर में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली पहले ही क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो चुकी है और पंजाब की नजरें होंगे कि वो इस मैच को जीते और टेबल में टॉप पर आए, शीर्ष पर आए।
बिल्कुल, देखिए, अब 4 टीमें तो तय हो चुकी है प्लेऑफ की, अब होड़ क्या है कि आप 1-2 में रहें। पहले दूसरे पे रहने का फायदा यह है कि अगर आप क्वालिफायर टीम हारती है तो उसके पास एक मौका और होगा कि वो दूसरी बार भी एलिमिनेटर के जो विनर हैं उनके साथ खेले। तो 1-2 में रहने की बात है, तो आपको अभी देखे होंगे हाल में अभी लखनऊ सुपर जायंट्स भी बाहर है, तो जो पिछला मैच था उसमें उन्होंने खेल खराब किया, और आज देखिए तो आज भी दिल्ली बाहर है, तो पंजाब की उम्मीदों पर वो पानी फेर सकते हैं। तो अब ये मुकाबला उसी नजरिए से है कि पंजाब की टीम ये मैच जीतने के बाद किस पोजीशन पे, अगर वो जीतती हैं तो बेहद अच्छी स्थिति में होंगे, 19 अंक हो जाएंगे, और अभी उसके बाद भी एक मैच उनका बाकी रहेगा, तो ये तय हो जाएगा कि वो पहली पोजीशन पे मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे।
जी बिल्कुल, अब बात करते हैं कल खेले गए मुकाबलों की, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 42 रन से हरा दिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
ईशान किशन की तूफानी पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 232 रन के लक्ष्य के जवाब में बेंगलुरु की टीम 19 ओवर और 5 गेंद में 189 रन पर ही सिमट गई। बेंगलुरु के लिए फिलिप सॉल्ट ने 62 रन की पारी खेली, विराट कोहली ने 43 रन बनाए, पर इनके अलावा बाकी बल्लेबाजों का बल्ला शांत ही नजर आया। सनराइजर्स के कैप्टन पैट कमिंस ने 3 और ईशान मलिंगा ने 2 विकेट लिए। इससे पहले हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 231 रन बनाए। ईशान किशन ने 48 गेंदों में 94 रन की शानदार नाबाद पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बेंगलुरु के रोमारियो शेफर्ड ने 2 विकेट झटके। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
अगर कल के मुकाबले की बात की जाए, एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर चेज में है, लेकिन जिस तरह आखिरी में पूरी टीम लड़खड़ा गई एक तरीके से पूरी पारी, क्या कहेंगे कल के मुकाबले?
मैं 3 मुकाबलों को एक साथ वही जोड़ना चाहूंगा। देखिए, उसके पहले के मुकाबले को देखें तो गुजरात का मैच था जो ऑलरेडी टीम क्वालिफाई कर चुकी है एलएसजी के खिलाफ, तो क्या है कि, और उसके बाद जो कल की बात करें तो आरसीबी की टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है और सनराइजर्स की टीम बाहर है, तो जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं उनके ऊपर थोड़ा ये प्रेशर है, खासतौर पे जो पहले दूसरे स्थान को लेकर, तो वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, और जो टीमें बाहर हैं और उन पर कोई प्रेशर नहीं है, अब तो हम बाहर हैं, ऑल आउट जाना है, हारे जीते, और यही देखिए तो एलएसजी की तरफ से, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से भी पहले बैटिंग करते हुए 235 का स्कोर बना था, और ये मैच की अगर बात करें तो 231 का स्कोर बना था, तो कुल मिला के इतना बड़ा जब स्कोर होता है 225 प्लस तो ये बहुत दबाव वाला होता है। अगर आपके विकेट गिरने लगे तो फिर संभलने का बहुत कम समय होता है। यही वजह है कि ये दोनों टीमें, और अब ये जो मैच आज का चल रहा है वो दिल्ली वर्सेस पंजाब, तो पंजाब की टीम का भी वही लक्ष्य है कि वो जीतें और टॉप 2 में पहुंचे, और दिल्ली का लक्ष्य है कि हम किसी तरह इनको हराएं। तो टीमों पर जो पहुंच चुकी है उन पर प्रेशर है, वो वाला प्रेशर दिख रहा है, और बड़ा स्कोर जब बन रहा है तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं हो रहा है।
जी बिल्कुल, प्रतियोगिता में कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। वहीं शाम को 7:30 बजे एक अन्य मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने जापान के युशी तनाका को सीधे गेम में 21-18, 24-22 से हराकर 6 साल बाद BWF टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया, और उसके साथ ही इस साल इस प्रतियोगिता में फाइनल में खिताबी मुकाबले में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। किदांबी, किस तरह से देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस को?
बिल्कुल, देखिए उन्होंने खुद भी कहा ये मैच जीतने के बाद कि वो आउट ऑफ टच नहीं हुए थे, बट इंजरी की समस्या रही थी, कई बार उनके चोटिल होते रहे हैं, उम्र बढ़ने के साथ खिलाड़ियों के इस तरह की भी समस्या आती है कि अपने आप को कभी कंधे की इंजरी हो गई, कभी बैक की इंजरी हो गई, कभी नी की इंजरी हो गई, उससे बच के और आगे बढ़ना, तो वो खुद भी कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था और इसके बाद जब आज हाथ जब वो आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि ट्रैक पर वापस आ गए हैं। और ये सिर्फ श्रीकांत की बात नहीं है, अगर देखें तो हाल के दिनों में, हम एक समय ऐसा था अब से 2 साल पहले की बात करें तो जितने भी BWF जो ये टूर्नामेंट्स होते हैं अलग अलग, जैसे ये 500 टूर्नामेंट है, 250 होते हैं और फिर वो 750, 1000, इस लेवल में हमारे भारतीय सेमीफाइनल तक पहुंचना, खिताब जीतना, आए दिन हम यही खबरें सुनते थे और इस पर बातचीत करते थे। अब उसका सूखा पड़ गया था पिछले काफी समय से, और उसमें ये योगदान बहुत रहा कि प्लेयर्स कुछ तो आउट ऑफ फॉर्म चले गए, कुछ सीनियर प्लेयर्स को युवा है तो वो चोटिल है। अब ये जो फाइनल में पहुंचे और खिताब जीतते हैं तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा, न केवल श्रीकांत के लिए बल्कि पूरी बैडमिंटन फ्रेटर्निटी है जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनमें एक नया उत्साह जगेगा।
जी बिल्कुल, श्रीकांत का सामना कल फाइनल में विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी चीन के ली शी फेंग से होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पूर्वोत्तर में उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की शुरुआत की जाएगी। वे आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान आयोजित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स हर वर्ष आयोजित किए जाएंगे और इनमें ओलंपिक खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया जाएगा।
खेलो इंडिया की एक श्रेणी चलाई है जिसमें खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स को भी हम ऐड कर रहे हैं। हर साल खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स होगी। ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स में नॉट ओनली फॉर ओलंपिक्स गेम्स बट ट्रेडिशनल गेम्स को भी महत्व दिया जाएगा।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स और अब नॉर्थ ईस्ट गेम्स। देश में खेलों का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया जाए, बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं ये इवेंट्स।
बिल्कुल, आप देखिए तो खेलो इंडिया और भी आप जोड़ सकते हैं जो विंटर गेम्स भी कर रहे हैं, तो हर तरह के प्लेयर्स इवन पैरा एथलीट्स के लिए भी कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसे खेल हैं जैसे क्रिकेट की बात करें तो साल भर कई टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, उससे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता है, नए टैलेंट सामने देखने को मिलते हैं। तो अब बाकी जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट हैं उसमें क्या होता था कि प्लेयर्स को साल में एक नेशनल टूर्नामेंट हो गया, कोई कुछ टूर्नामेंट्स एक दो कर लिए। अब ये खेलों में इंडिया ऐसा हो रहा है, एक वृहद पैमाने पे हो रहा है, वहां से कई प्लेयर ऐसे आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनली अच्छा कर रहे हैं बल्कि ओलंपिक्स भी जा रहे हैं खेलो इंडिया से निकले हुए प्लेयर, तो एक ऐसा माहौल बन रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अंतिम लक्ष्य क्या है, तो अंतिम लक्ष्य है 2036 के ओलंपिक्स का भारत में आयोजन, और जब तक वो आयोजन हो तो एक ऐसा एक पूल तैयार हो कि लगभग हर खेल में हम एक मजबूत स्थिति में रहे, फाइट देने की स्थिति में रहे, और आज के जो युवा हैं वो उस समय आज से 10-12 साल के बाद एक बड़े अच्छे प्लेयर बन के रहे और भारत को एक चुनौती देने की स्थिति में लेकर जाएं।
जी बिल्कुल, हमने बात की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की और वहीं से निकले खिलाड़ी भारत के युवा निशानेबाज नारायण प्रणव ने ISSF जूनियर विश्व कप में आज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत का पांचवा पदक है।
यही बात मैं कह रहा था कि अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे आर्चर हैं, कई ऐसे शूटर हैं जो कि वहां पर निकले, उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और फिर इंटरनेशनली भी भारत के लिए गोल्ड जीत रहे हैं, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में भारत की उम्मीदें और बढ़ रही हैं इनके आगे आने से।
जी बिल्कुल, और हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर ने अपने रजत पदकों की बदौलत महाराष्ट्र और नागालैंड को पछाड़ करके चैंपियन बन गया है। वो इन खेल्स का 5-5 स्वर्ण पदक थे दोनों राज्यों के पास, लेकिन मणिपुर 6 रजत पदक के साथ शीर्ष पर रहा। नॉर्थ ईस्ट के ये जो स्टेट्स हैं,
बड़ी देखिए इंटरेस्टिंग बात है, बीच गेम्स की बात हो रही है और मणिपुर के प्लेयर हैं, वहां पे कोई बीच नहीं, हालांकि एक कंसेप्ट है बीच गेम्स, ये कहीं भी रेत करके उस तरह से खिलाते हैं, बट फिर भी ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स हो रहा है, तो आप देखिए कि कितनी खेल प्रतिभा है उस तरफ।
जी बिल्कुल, और देखा जाए तो इन खेलों में मतलब खाली नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, मतलब जो स्टेट,
मैं बीच गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं, अब अगला जो स्टेप जो नॉर्थ ईस्ट जो गेम्स की बात अभी खेल मंत्री ने कहा है, तो वो बात उसकी बात से मैं जोड़ रहा हूं कि खेलो इंडिया सारे गेम्स हो रहे, तो जो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली गेम्स करने की बात है तो उसका भी इंतजार रहेगा और उधर काफी सारे जो टैलेंट है वो निकल के सामने आएंगे।
जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के सभी राज्यों से अच्छी खेल प्रतिभाएं निकल के सामने आए। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पे हमसे बात की, आपका धन्यवाद।
नमस्कार।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैंट की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।